धव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिप्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतहिष्ट वाइन ग्रह सभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालम् पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭೋರ್ಮತಮಿದಂ ತತ್ತಾದರಹನ ಪರಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಪಿಛಲೆ ಏಕ್ ಹಫ್ತೆ ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕಿ ಶೃಂಖಲಾ ಚಲ ರಹೀ ಹೈ ಯಹಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲಾನಂದ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷ ಪರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ದಸವೆ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಸತ್ತಾಯಿಸವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಯಿ ಔರ್ ಅಠಾಯಿಸವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಹುಯಿ ಔರ್ ಇಸ್ ಅಠಾಯಿಸವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯೇ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್ ಕಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ದೇವತಾ ವರುಣ ದೇವ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಕೃಪಾ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್. ಜಬ್ ಏಕಾದಶಿ ಕೆ ವ್ರತ ಕೆ ಬಾದ ದ್ವಾದಶಿ ಕೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮೇ ಬಲ್ಕೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಭೀ ಅಭಿ ತಕ್ ಹುವಾ ನಹೀ ಥಾ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಭೀ ನಹೀ ಹುವಾ ಥಾ, ಅಭಿ ತಕ್ ಅಂಧೇರಾ ಥಾ. ತೋ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಿತಾ ಯಮುನಾ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಗಯೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಸಹಿ ಸಮಯ ನಹೀ ಥಾ ಯಮುನಾ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ವರುಣ ದೇವ್ ಕೆ ಏಕ್ ಸೇವಕ್ ಥೆ ಜಿನ್ಹೋನೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ವರುಣ ಲೋಕ ಲೆ ಗಯೆ. ತಟ್ ಪರ್ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಮಿತ್ರ ಥೆ ಗೋಪಗಣ ಥೆ ವೊ ಬಹುತ್ ಚಿಂತಿತ ಹೋ ಗಯೆ. ಬಡೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಔರ್ ಬಲರಾಮ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪುಕಾರ್ನೆ ಲಗೆ ಕಿ ಆಪ್ ಆಯಿಯೆ ಔರ್ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಬಚಾಯಿಯೆ. ತೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತುರಂತ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚಲೇ ಆಯೆ ಔರ್ ಸೀಧೆ ಯಮುನಾ ಜಿ ಮೇ ಜಾಕರ್ ವರುಣ ಲೋಕ ಪಹುಂಚೆ. ವಹಾಂ ಪರ್ ವರುಣ ದೇವ್ ನೆ ಜಬ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ದೇಖಾ ತೋ ಬಹುತ್ ಹೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಹುಯೆ ಕಿ ಮಾನೋ ಏಕ್ ಉತ್ಸವ ಹುವಾ ವರುಣ ದೇವ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಉನ್ಹೊನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸ್ತುತಿ ಕಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚನಾ ಕಿ ಔರ್ ಅಂತ ಮೇ ಕಹಾ ಕಿ ಅವಶ್ಯ ಆಪ್ಕೆ ಪಿತಾ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಆಪ್ ವಾಪಸ್ ಲೇಕರ್ ಜಾಯಿಯೇ. ಮೇರೆ ಸೇವಕ್ ನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂರ್ಖತಾ ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪ್ಕೆ ಪಿತಾ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಔರ್ ಸೇವಕ್ ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ ಕೋ ಜಾತಿ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿ ಯೇ ಗಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಹೈ ಐಸಾ ಸಮಝ ಕೆ ಆಪ್ ಜೋ ಉಚಿತ್ ದಂಡ ಸಮಝೆ ವೋ ಪ್ರದಾನ ಕರೆ ಔರ್ ಮೇರೆ ಉಪರ್ ಆಪ್ ಕೃಪಾ ಕರೆ. ಜಬ್ ವರುಣ ದೇವ್ ನೆ ಐಸೆ ಕಹ ದಿಯಾ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಇಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಲೀಲಾಯೆ ಇತನಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋತಿ ಹೈ, ಇತನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೋತಿ ಹೈ ಕಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಲೀಲಾಓ ಕೋ سننے کے لیے بار بار آنے لگتا ہے تو اسے باہر سنسار کی کتھائیں بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں, اور بھگوان کی کتھاؤں کو سنتے سنتے ایسے ویکتی کو دیویہ آنند کی پراپتی ہوتی ہے. شری کرشن اپنے بھکتوں کو نربھے پردان کرتے ہیں, یہ ان کا ورت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہرنیہ کشیپ اور پرہلاد کے ادھارن سے ہرنیہ کشیپ کتنے شکتیشالی آدمی تھے بھوتک درشٹی سے, سارے برہمانڈ میں اتنا ان کا پربھاؤ تھا کہ دیو لوک کے اوپر جو دیوتاگن رہا کرتے تھے وہ بھی ہرنیہ کشیپ کے نام کے سننے ماتر سے کانپنے لگتے تھے. اور کہاں پرہلاد جو کہ ایک 5 سال کے بالک تھے, ہرنیہ کشیپ کے پتر تھے, پھر بھی پرہلاد کے اندر وہ شکتی تھی جو ہرنیہ کشیپ کے اندر نہیں تھی, اور وہ تھی بھگوان کرشن کی بھکتی کی شکتی. اور بھگوان کی بھکتی ہونے کے کارن پرہلاد مہاراج بالکل نربھے تھے. جب ہرنیہ کشیپ نے پرہلاد کی ہتیا کرنا چاہا اور طرح طرح سے ان کا پریاس جب اسفل ہوتا گیا تو ہرنیہ کشیپ بہت ہی بھے بھیت ہو گیا, اور وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا شکتیشالی ہونے کے بعد بھی میں اس چھوٹے سے بچے کو نہیں مار پا رہا ہوں جو کہ میرا بچہ ہے, اور جب میں اسفل ہو رہا ہوں اس پرکار تو میں بھے بھیت ہو رہا ہوں, لیکن اتنا اس بچے کے اوپر پرہار کرنے کے بعد بھی یہ بچہ بھے بھیت نہیں ہو رہا ہے, بڑے آشچرے کی بات ہے. تو یہ ایک سپشٹ ادھارن ہے کہ کیسے کرشن بھکتی کرنے سے ویکتی نربھے ہو جاتا ہے, اور جو ویکتی بھگوان کرشن کے اوپر نربھر نہیں رہتا ہے تو ہمیشہ بھے کا شکار بن جاتا ہے. دوسرا ادھارن اس کے لیے ہے امبریش مہاراج اور درواسا منی کا. جب درواسا منی نے شراپ دینا چاہا امبریش مہاراج کو, کیونکہ درواسا منی نے سوچا کہ امبریش مہاراج نے مریادا کا ویتکرمن کیا ہے, مریادا کا الگھن کیا ہے, کیونکہ اتیتھی کے بھوجن سیون کرنے کے پہلے امبریش مہاراج نے اپنا ورت توڑ دیا تو اپنے بالوں سے ایک راکشس اتپن کیا, پرنتو امبریش مہاراج اس سمے راکشس کو دیکھ کر بھی بالکل ڈرے نہیں, کیول بھگوان شری کرشن کا سمرن کرتے رہے ہاتھ جوڑ کر. امبریش مہاراج وچلت نہیں ہوئے, پرنتو بھگوان وچلت ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ منی ہیں, یوگی ہیں, ان کو ایسا کاریہ تو نہیں کرنا چاہیے, اور یہ میرے بھکت کو پریشان کر رہے ہیں. تو بھگوان کا جو سدرشن چکر ہے ان کی انگلی سے نکل کر سیدھے شیگھر آ کر راکشس کی ہتیا کر دی. راکشس کا جب ود ہو گیا تو وہی سدرشن چکر درواسا منی کا پیچھا کرنے لگا. درواسا منی نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا, اور وہ بھاگنے لگے وہاں سے, لیکن جہاں بھی درواسا منی بھاگتے گئے وہاں کوئی راحت ان کو نہیں ملی. برہما جی کے پاس گئے, شیو جی کے پاس گئے, انتتہ ویکنٹھ میں بھگوان نارائن کے پاس گئے, اور نارائن بھگوان نے بھی ان کو کہا کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا کیونکہ تم نے میرے بھکت کے پرتی اپرادھ کیا ہے, تو جاؤ کیول میرے بھکت کے چرنوں میں کشما یاچنا کرو, تب یہ سدرشن چکر تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا. تو درواسا منی نے ویسے ہی کیا, اور سدرشن چکر امبریش مہاراج کے پرارتھنا پر پیچھے ہٹ گیا اور شری کرشن کے انگلی میں چلے گیا.
तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि दुर्वासा मुनि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके योग सिद्धियों के बल पर वो अम्बरीश महाराज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, परंतु अम्बरीश महाराज के पास वो शक्ति थी भगवान की भक्ति जो कि दुर्वासा मुनि में नहीं थी। दुर्वासा मुनि केवल एक योगी थे, तपस्या करके योगाभ्यास करके उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, परंतु भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की थी। इसलिए अम्बरीश महाराज के ऊपर भगवान की असीम कृपा रहने के कारण अम्बरीश महाराज की रक्षा पूरी तरह से हुई, उनके शरीर का एक बाल भी नहीं बका, बल्कि अम्बरीश महाराज पूरी तरह से निर्भय थे और दुर्वासा मुनि घबरा गए जब वही सुदर्शन चक्र उनके ऊपर आया। तो हम जान सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये संसार में हर मोड़ पर हर कदम पर भय है। अभी आजकल स्वाइन फ्लू का भय छाया हुआ है सब जगह, सारे देश में, सारे विश्व में बल्कि, और जिस हद तक भारत में ये फैला हुआ है उससे कहीं ज्यादा अन्य देशों में फैला हुआ है। तो हालांकि हमें जो उचित है वो करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, परंतु अंततः भक्त निर्भय होते हैं, ऐसी चीजों से भयभीत नहीं होते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं हर अवस्था में। तो ब्रजवासी गण, इनको भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई सहारा नहीं था, और कोई आश्रय नहीं था। जिस प्रकार से जब छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने माता पिता के सिवाय दूसरे और किसी का आश्रय नहीं पता होता है, अपने माता पिता के आश्रय में वो बिल्कुल तनाव मुक्त और सुरक्षित रहते हैं, बड़े सुख का और शांति का अनुभव करते हैं। तो ब्रजवासी जब श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण ने उनकी इस प्रकार से रक्षा की, स्वयं अपने पिता को वरुण देव के लोक से लेकर आए। जब वरुण देव को दर्शन दिया श्री कृष्ण ने, तो वरुण देव ने स्तुति जब समाप्त की तो वो कहने लगे कि हे कृष्ण, वास्तव में आपकी कृपा मात्र है कि आप मेरे सामने आए हैं, आपका ये सुंदर पवित्र रूप नंद नंदन के रूप में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में, आपका ये सुंदर रूप जो कि कामदेव कंदर्प के सुंदर रूप से भी हजारों गुना ज्यादा सुंदर है, इस सुंदर रूप ने यहाँ प्रकट होकर न केवल मेरा उद्धार किया है परंतु मेरे लोक के जितने भी निवासी हैं उन सब का उद्धार हो चुका है। अभी आप मेरे ऊपर कृपा करें। श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वहां से, वरुण लोक से लेकर जब वो सीधे चले आए यमुना के तट पर, फिर से आ गए तो वहां पर क्या अवस्था हुई, यहां आगे सुखदेव महाराज क्या कहते हैं हम सुनते हैं। तो इस 28वें अध्याय के 9वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायागात स्वपितरं बंधूनां चावहं मुदम्। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः। इस प्रकार से जब वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी स्तुति से, अपनी नम्रता से, उनकी सेवा से, तो श्री कृष्ण जो कि भगवान हैं और ईश्वरेश्वर है, ईश्वर के ईश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। छोटे और बड़े ईश्वर तो कई पाए जाते हैं इस भौतिक सृष्टि में, परंतु इन सारे ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण हैं, ईश्वर परम कृष्ण। केवल ईश्वर नहीं है श्री कृष्ण, अनेकों को ये पदवी दी जा सकती है कि ये ईश्वर है वो ईश्वर है, परंतु सच्चे ईश्वर श्री कृष्ण है, को क्योंकि उनसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। और जितने भी अन्य छोटे और बड़े ईश्वर हैं वो सब उनके अधीन हैं। फिर आदाय गात स्वपितरम, अपने पिता को लेकर, बंधु नाम च अवहन मुदम, फिर अपने रिश्तेदारों के पास में, ब्रजवासियों के पास में अपने पिता को लेकर आए। और जब ब्रजवासियों ने नंद महाराज को फिर से देखा श्री कृष्ण के साथ में, दोनों आ गए हैं, तो वहां तो कोलाहल मच गया आनंद का, जय जयकार होने लगा। सारे ब्रजवासी जो कि बड़े चिंता से यमुना के तट पर आकर इकट्ठे हुए थे, हाय हाय कर रहे थे कि न केवल नंद महाराज चले गए परंतु श्री कृष्ण भी उनको ढूंढने के लिए चले गए, अब न जाने क्या होगा, अब नंद महाराज गए अब कृष्ण भी नहीं आएंगे तो क्या होगा। सब वहां प्राय शव के समान लेटे पड़े थे यमुना के तट पर। और जब अचानक उन्होंने श्री कृष्ण और नंद महाराज को पुनः देख लिया तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही, उन्हें ऐसे लगा कि वो अमृत के किसी समुद्र में तैर रहे हों। और जोर जोर से बड़े अपने आनंद को व्यक्त करने लगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने पिता को वरुण देव के यहां से बचाकर फिर वो लेकर आए। तो श्री कृष्ण ने यहां अपने शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया है और ये बताया कि हालांकि वरुण देव इतने ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली एक देव हैं इस ब्रह्मांड के, परंतु श्री कृष्ण के सामने वरुण देव की शक्ति कहीं की भी नहीं है। वरुण देव तो वास्तव में श्री कृष्ण के दासों के दास मात्र हैं। फिर दसवें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदस तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम कृष्णे च सन्नतिम तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत। नंदः तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम, नंद महाराज ने जब दृष्ट्वा ऐसे कुछ देखा जो कि अतीन्द्रिय था, जो कि पहले उन्होंने नहीं देखा था कभी, अति इंद्रिय अपने इंद्रियों से जो परे है, जो पहले अपने इंद्रियों से कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था या पहले कभी देखा नहीं था ऐसे अपने आंखों से, और उन्होंने अब देखा। दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम, लोकपाल अर्थात वरुण देव, महोदय महाउदय अर्थात वरुण लोक का ऐश्वर्य। वृंदावन तो एक साधारण गांव था जहां पे गोपगण रहा करते थे गोपियों के साथ, गायों के साथ। तो उनका ऐश्वर्य क्या था बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो? उनका ऐश्वर्य था कि उनकी प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत थी, सुंदर सुंदर वन, हरियाली, खेत, सुंदर गांव, छोटे बड़े गांव, उनमें से सुंदर सुंदर गाय, बैल, बछड़े, सुंदर गोप गोपियां, ये एक गांव का माहौल वहां पर था। परंतु जिस प्रकार का ऐश्वर्य वरुण लोक में नंद महाराज ने देखा तो वो उन्होंने कभी नहीं देखा था पहले, इसलिए वरुण देव को विस्मितो बहुत विस्मय हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हो गए वो। कृष्णे च सन्नतिम तेषां ज्ञातेभ्यः अब्रवीत, और न केवल वरुण लोक के ऐश्वर्य को देखकर नंद महाराज विस्मित हो गए थे, जब उन्होंने देखा सन्नतिम तेषां, तेषां अर्थात वरुण लोक के निवासियों ने सन्नतिम किस प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, उनका गुणगान किया, उनको सम्मान प्रकट किया उनके प्रति, तो ये सब देखकर नंद महाराज कुल हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे मेरे बेटे को ये लोग इतना सम्मान कैसा दे रहे, मेरा तो बच्चा है और ये वरुण देव हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने इतना सम्मान मेरे बच्चे को कैसे किया। और इतना ही नहीं, वरुण देव के साथ साथ जितने भी और उनके लोक के निवासी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया, ये कैसे हो सकता है। इसलिए ज्ञातेभ्य अब्रवीत, फिर गोपों के साथ में जब वो बैठे, उपवास तोड़ दिया और फिर बड़े आराम से बैठे और अपने गोप और गोपियों को, साथियों को बुलाया और फिर ये सब बताने लगी। अरे पता है मैंने क्या देखा, मैं वरुण लोक में गया था और वहां पे मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऐश्वर्य देखा जिसकी कोई कल्पना नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते सपने में भी ऐसा भी कोई ऐश्वर्य हो सकता है। और साथ साथ जब कृष्ण वहां पे पहुंचा तो पता है क्या किया वरुण ने, ये इतने बड़े आदमी हैं, उसने नमस्कार किया मेरे कृष्ण को, प्रणाम किया, दंडवत किया, और इतना ही नहीं बहुत सारे स्तुतियां कहने लगा, वेद पाठ तरह तरह के, आप भगवान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और सारे लोग वरुण देव के साथ हाथ जोड़कर खड़े थे वहां पर। तो ये सब बड़े आश्चर्य की बातें हे ब्रजवासीगण मैंने देखा वहां जाकर। तो इसलिए अभी आप सोचो कि क्या है ये सब। नंद महाराज जो हैं, हालांकि उन्होंने ये सुना था, ये सारी स्तुति श्री कृष्ण की वरुण के माध्यम से उन्होंने सुनी, फिर भी उनके मन में विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा जो है ये भगवान है। हालांकि वरुण देव ने उनसे कहा कि आप भगवान हैं, आप सारे सृष्टि के उद्गम हैं, फिर भी उन्होंने नहीं माना। वो सोचने लगे कि भले वरुण देव ने ऐसे कहा हो, फिर भी ये तो मेरा लाडला बच्चा ही है जिसको मैं प्रेम करता हूं, मैं और यशोदा थोड़ी मानेंगे कि हमारा बच्चा भगवान है, ये भगवान बिल्कुल नहीं है। भले ये लोग ऐसे माने, हमारे लिए तो ये केवल मेरा बच्चा है। तो ये है नंद महाराज और यशोदा माता का प्रेम। तो उस समय सारे ब्रजवासी वहां पर आए, सारे ब्रजवासियों ने आकर वहां श्री कृष्ण से कहना शुरू किया और वो श्लोक यहां पर है, हम इसका उच्चारण करेंगे। ते चोत्सुक्य धियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम्। अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मा उपाधास्यद् अधीश्वरः। ते चोत्सुक्य धियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम्। अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मा उपाधास्यदधीश्वरः। बोलिएगा।
अपि नः सगतिं सूक्ष्मां उपाधास्याद्दधीश्वरः ते चोत्सुक्यधियो राजन् गोपासदीश्वरहम् सूक्ष्माम् उपाधास्यदधीश्वरः।
अनुवाद। वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबों को भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे? जब नंद महाराज वापस आए और उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया उस समय जितने भी गोप वहां ध्यान से सब सुन रहे थे वो सोचने लगे कि ये कृष्ण अवश्य भगवान होगा। वो बड़े खुश भी हुए ये वर्णन सुनकर, परंतु साथ साथ वो उनके मन में वो गंभीर भी हुए। वो सोचने लगे और कहने लगे नंद महाराज से कि हे नंद महाराज, आपने पहले हमसे कहा था कि गर्ग मुनि जब आए थे कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये नारायण नहीं है, नारायण के समान है, बल्कि नारायण के अंश के हैं ये। परंतु अब जब आपने वरुण देव की स्तुति सुनाई तो इससे स्पष्ट होता है कि वरुण देव मानते हैं कि ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परम सत्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, और हम तो केवल इसे हमारा बच्चा मान रहे हैं। तो नंद महाराज के भाव में तो श्री कृष्ण अपने लाडले बच्चा ही था, परंतु ब्रजवासीगण इस समय ऐसा कहने लगे कि ये कृष्ण तो भगवान होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यद्यपि ब्रजवासियों को ये पता चला कि श्री कृष्ण भगवान हैं, फिर भी उनका जो मधुर प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, जिसके कारण वो श्री कृष्ण को अपना बच्चा, अपना मित्र आदि समझ रहे थे, वो माधुर्य की भावना वो नष्ट नहीं हुई, वो वैसे के वैसे रही। वो यूं ही बस बोल रहे थे कि ये भगवान है, जान भी लिए, परंतु फिर भी कृष्ण तो हमारा लाडला है, ये भावना थी। नंद महाराज का अनुभव, उन्होंने सोचा हाँ ये सही होगा, नहीं तो वरुण देव क्यों ऐसे बोलेंगे? वरुण देव कोई छोटे आदमी नहीं है, इस पृथ्वी के भी आदमी नहीं है, वो तो देवलोक के आदमी है, देवता है। जैसे सोचिए, यदि आप अपने छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं सड़क पर और अचानक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी राज्य है उनके मुख्यमंत्री, सब बड़े बड़े लोग आते हैं और सब आपके बच्चे के सामने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप सोचेंगे ये क्या है, है ना? आप विस्मित हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही नंद महाराज की दशा थी और ब्रजवासियों की दशा थी कि ये हमारा छोटा बच्चा और इसके सामने वरुण देव आए, वरुण देव ने कहा भगवान है तो होगा ही, ब्रजवासी कहने लगे। परंतु उनके जो ब्रज प्रेम में, उनमें कोई विघ्न नहीं आई। اس کے وپریت ہم دیکھتے ہیں کہ متھرا میں اور دوارکا میں جو شری کرشن کے پتا ہیں وسودیو، ان کے کرشن پریم میں وگھن آیا. کس پرکار کا وگھن؟ ایک بھاو کا وگھن. پہلے تو وسودیو اور دیوکی شری کرشن کو اور شری بلرام کو اپنا پتر ہی مانتے تھے، پرنتو جب متھرا میں شری کرشن اور بلرام نے نہ کیول کولیا پیڑ ہاتھی کا ود کر دیا اور انیک بڑے بڑے اسروں کا ود کیا مل یدھ آدھی میں، جیسے کہ چانور، مشٹک آدھی، اور تتپشچات انہوں نے سویم کنس کا بھی ود کر ڈالا جو کہ بہت شکتیشالی تھا، تو وسودیو اور دیوکی کو پتا چلا کہ جس کو ہم اپنا بچہ سمجھ رہے تھے وہ تو بھگوان ہے. اور شکدیو گوسوامی ورنن کرتے ہیں کہ جب شری کرشن نند مہاراج کے سامنے آئے، نند مہاراج نہیں کھما کیجیے، وسودیو کے سامنے آئے، تو وسودیو نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہے کرشن، ہے بلرام، آپ ہمارے پتر نہیں ہو، آپ پرم ستی ہیں، بھگوان ہیں آپ، اس لیے آپ کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں. کرشن کو اچھا نہیں لگا، ترنت اپنے ماتا پتا کی گود میں گئے. تب ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے بچہ ہی بچہ ہی. کیونکہ کرشن اس ایشوری بھاو کو اپنے ماتا پتا میں پسند نہیں کرتے تھے، تو ترنت پھر سے وہ بھاو لے آنے کے لیے انہوں نے پریاس کیا، اور پھر وسودیو دیو کی پھر سے ماننے لگے. پھر بھی ان کے من میں ایک پرکار کا وکار آ گیا، ان کے بھاو میں جو وکار کیا تھا کہ یہ بھگوان ہے. دیکھیے ہم اس کے لیے وکار کہتے ہیں. وکار شبد کا پریوگ ایک درشٹی سے دیکھا جائے تو اپیوکت نہیں ہے یہاں پر. جیسے کوئی شری کرشن کو غلط سمجھتا ہے، اسے ایک سادھارن آدمی سمجھتا ہے، یا کرشن کی اوستھا کو نہیں سمجھ کر کہتا کہ شری کرشن نے ایسے غلط کام کیا، تو اسے ہم وکار کہہ سکتے ہیں کہ اس ویکتی کے من میں وکار آ گیا، یہ دوشت ہو گیا اس کا من، اس لیے وہ ایسے کہہ رہا ہے. تو وسودیو تو شدھ بھکت ہیں، پرنتو حالانکہ وہ شدھ بھکت ہیں ان کا بھاو ایشوری گیان سے یکت ہے، پرنتو برجباسیوں کا بھاو ایشوری گیان ہوتے ہوئے بھی وہ مادھوری جو ہے وہ نشٹ نہیں ہوا. اسی پرکار سے ارجن تو شری کرشن کے ساتھ بڑے آرام سے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہنسی مزاق کرتے تھے، پرنتو جب شری کرشن نے اپنا ویراٹ روپ کا درشن دلایا ارجن کو، تو ارجن کو بھے ہو گیا کہ ارے ہے کرشن، میں آپ کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے متر ہو، لیکن ابھی آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تو پرم ستی ہیں، آپ بھگوان ہیں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے کھما کر دینا. تو جو وسودیو اور ارجن کے من میں بھاونا اتپن ہوئی وہ نند مہاراج اور انیہ برجواسیوں کے من میں اتپن نہیں ہوئی. حالانکہ برجواسی جانتے تھے کہ یہ بھگوان ہے یہ بچہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نند مہاراج اب دیکھو کرشن بھگوان ہو سکتا ہے، لیکن آخر وہ ہمارے بھائی کا بچہ ہے، یا تو ہمارے اندر کتنے ہیں جو یشودا مائی کے بھائی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بہن کا لڑکا ہے، تو ایسے ہم سب رشتے دار ہیں اور یہ سب ہمارے ہم سب کے بچے کے سمان ہی ہے، اس لیے کرشن کو ہماری اچھا پوری کرنی چاہیے. تو کرشن نے نند مہاراج کو ورون کا لوک درشن کرایا، تو ہمیں کیا وہ اپنا ویکنٹھ لوک کا درشن کرائیں گے؟ دیکھیے برجواسی گن بہت معصوم تھے، ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھکت کو تو نراکار برہم کا درشن کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے، ویکنٹھ کا درشن کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے، کیول شری کرشن کی پرسنتا کے لیے سیوا کرنے کی اچھا ہوتی ہے، سب صحیح ہے، پرنتو یہاں پر برجواسی جو ہیں उनका प्रेम इतना स्वाभाविक है और वो इतने मासूम थे स्वभाव से, बच्चों के समान थे। बच्चों के समान इस दृष्टि से नहीं कि बचपना था, परंतु इस दृष्टि से कि उनका हृदय बहुत स्वच्छ था, वो बहुत मासूम थे, उनका मन निर्मल था। तो वो सोच रहे थे कि अरे कृष्ण को हमें दिखाना चाहिए वैकुंठ। तो फिर एक ब्रजवासी कहने लगे, हाँ हाँ कृष्ण को हमें वैकुंठ के निवासी बनाना चाहिए। तो कोई दूसरा कहने लगा, नहीं मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। कोई कहने लगा, अरे मैं तो निराकार को देखना चाहता हूँ, ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्योति क्या होती है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो ऐसे जितने भी ब्रजवासी गोप वहां पर उपस्थित थे, वो सब अपने अपने इच्छाओं को व्यक्त करने लगे, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। और वहां माहौल आप समझ सकते हैं, बड़े हर्ष उल्लास का माहौल था। हर एक ब्रजवासी बच्चों की तरह, मैं ये देखना चाहता हूँ, कृष्ण हमको ये दिला दो। तो कृष्ण ने कहा, जो भी आप चाहें भगवान से मांगिए, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से ये मांगते गए मांगते गए। ये भगवान का स्थान है, अपने भक्तों की इच्छा सदैव वो पूर्ण करते हैं और अवश्य भगवान के भक्तों को भगवान के धाम की ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में इस बात की पुष्टि बार बार हुई है। इसके एक दो तीन उदाहरण केवल अब हम देना चाहेंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याचिनोऽपि माम्। वो कहते हैं कि जो देवों की उपासना करते हैं वो देवलोक चले जाते हैं, जो लोग पितरों की उपासना करते हैं वो पितृलोक चले जाते हैं, जो भूतों की और प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूतों के पास चले जाते हैं, परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, हे अर्जुन। इस प्रकार से भगवान यहां बता रहे हैं कि उनके भक्तों के लिए उनके धाम की प्राप्ति निश्चित है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बताते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि जो भी कठिनाइयां, जो भी विपद मेरे जीवन में आ रहे हैं वो केवल मेरे पूर्वकृत विकर्मों के कारण, पापों के कारण हो रहा है, और ऐसे अपने विपद की अवस्था को जो शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सहन करता है, और ऐसे सहन करते करते भगवान के असीम कृपा की प्रतीक्षा करता है, और साथ साथ में हृदवाग वपो भी विदधन नमस्ते, भगवान को अपने हृदय से, अपने मन से, अपने वचनों से नमस्कार करते रहता है, अर्थात भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक रत रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को जाने का अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जो इस प्रकार से जीता है वो दाय भाग अधिकारी व्यक्ति हो जाता है मुक्ति पद के लिए। मुक्ति पद का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति इस भौतिक बंधन से, इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और स्थित हो जाता है उनके चरणों में जो कि मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, वो है श्री कृष्ण। तो मुक्ति प्रदाता तो केवल श्री कृष्ण है, और ऐसे जो अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करके श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है वो दया भाग वो अधिकारी व्यक्ति होता है भगवान के धाम को पहुंचने के लिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बेटा अपने पिता के जायदाद का अधिकारी व्यक्ति होता है, उसे कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है, केवल जीवित रहना पड़ता है अपने पिता के साथ साथ पिता की सेवा करते हुए, और स्वयं ही पिता के जायदाद जो है उसे मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते रहता है जीवन भर, कठिनाइयों के बीच में भी भगवान को भूलता नहीं है, भगवान की सेवा भगवान का चिंतन मनन करते रहता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अवश्य अपना धाम प्रदान करते हैं, स्वयं ही उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है बिना प्रयास किए हुए। भगवान के पास जाकर ऐसे भक्त को कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे आपका धाम चाहिए, आप मुझे आपके धाम में ले जाइए, और न ही भक्त ऐसे चाहता है। भक्त यही चाहता है कि जो भगवान चाहते हैं वही हो। यदि भगवान चाहें कि मैं यहीं पर पृथ्वी लोक में रहूं और उनके वाणी का प्रचार प्रसार करूं तो वही सही। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं कि श्री कृष्ण भक्तों की संपत्ति होती है, और श्री कृष्ण के लिए एक ही काम है कि अपने आप को भक्तों के बीच में बांट देना। कृष्ण रूपी संपत्ति का बंटवारा होता है भक्तों के बीच में, और कृष्ण और कृष्ण के धाम के लिए कुछ नहीं कोई अंतर नहीं है। जब ध्रुव महाराज, जो कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद चाहते थे, जब उन्होंने श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए तपस्या की और श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए प्रश्नी गर्भ के रूप में, और उन्होंने ध्रुव महाराज से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि कुछ तो लेना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे कोई भौतिक कामना से आए थे मेरे पास, कुछ तो लेना चाहिए। परंतु ध्रुव महाराज नहीं लेना चाहते थे, हालांकि पहले जब वो भगवान के पास आए थे तो वो चाहते थे ये सब, परंतु जब भगवान का दर्शन हुआ, जब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तब अपने समस्त भौतिक इच्छाओं को ध्रुव महाराज ने त्याग दिया। फिर भी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें इस भौतिक सृष्टि का राज्य प्रदान कर रहा हूं, तुम और 36,000 वर्षों तक यहां राज्य करना, तुम्हारी इंद्रियां दुर्बल नहीं होंगी, तुम्हें कोई दुख और कष्ट नहीं होगा, और तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं, और जब तुम्हारा समय राजगद्दी पर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, तब मैं तुम्हें एक विशेष लोक प्रदान करूंगा, और ऐसा विशेष लोक है जो कि इस ब्रह्मांड का नहीं है, हालांकि ब्रह्मांड के भीतर ही होगा, फिर भी यह ब्रह्मांड का नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक ऐसे स्थान मांगा था मुझसे जो कि ब्रह्मा जी के भी राज से श्रेष्ठ है, तो इस ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मांड के भीतर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है। लेकिन मैं बद्ध हूं मेरे भक्तों के इच्छाओं से, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसे एक धाम प्रदान करना पड़ रहा है जो कि इस ब्रह्मांड का नहीं है, और वो मेरा ही धाम है, तो मैं मेरे धाम को तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे लिए खास मैंने एक वैकुंठ लोक बनाया है ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड के भीतर परंतु ऊपर के भाग में, और वो आज से ध्रुव तारा कहलाएगा, तो तुम यहीं पे रहना। तो ब्रह्मांड के भीतर ध्रुव महाराज ने एक विशेष वैकुंठ लोक की निर्मिति की, इसका प्राकट्य कराया केवल ध्रुव महाराज के लिए। और ध्रुव महाराज तो भौतिक इच्छा लेकर आए थे पहले, फिर भी भगवान ने ऐसा किया। तो जो लोग भौतिक इच्छा न लेकर केवल शुद्ध भक्ति की भावना से भगवान के पास आते हैं, तो क्यों नहीं भगवान उनको अपना धाम प्रदान करेंगे, अवश्य करेंगे। जब भगवान जो कि बहुत कृपालु होते हैं, वो कभी कभी अपने शत्रुओं को भी मुक्ति दिला देते हैं। हतारी गतिदायक, हम जैसे थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान जिनकी हत्या करते हैं उन्हीं को वो कोई श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। कभी कभी ये श्रेष्ठ गति स्वर्गलोक हो सकता है, कभी कभी निराकार ब्रह्म ज्योति हो सकता है, कभी कभी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है उस व्यक्ति को, कभी कभी गोलोक वृंदावन की प्राप्ति भी हो सकती है, जैसे कि पूतना के साथ में हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने प्रिय गोप बालकों ने, गोपों ने, गोपियों ने जब ऐसे विचार व्यक्त किए तो श्री कृष्ण कैसे सोच रहे थे, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ करते हैं। इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपये तद अचिन्तयत्। इति स्वानाम विज्ञाय, ऐसे उनके जो भक्त थे स्वानाम, उनके इच्छा को समझकर संकल्प, उनकी जो इच्छाएं थी उनको समझकर स भगवान कृष्ण जो कि स्वयं भगवान हैं और जो दृक अखिल दृक हैं, जो सब कुछ देख सकते हैं, समस्त सारे दिशाओं में उनकी दृष्टि है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि श्री कृष्ण नहीं देख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा संकल्प सिद्धये तेषां कृपया एतद् अचिन्तयत्। तो कृष्ण ने चिंतन किया कि जो मेरे भक्तों का संकल्प है या जो उनकी इच्छा है वो मुझे सिद्ध करना चाहिए, संकल्प सिद्धये मुझे पूर्ण करना चाहिए। ऐसे कृष्ण सोचने लगे। भगवान कृष्ण के मन में क्या विचार था, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण सोचने लगे कि मेरे पिता नंद महाराज जब वरुण लोक में गए और वरुण देव का ऐश्वर्य देखा तो उन्होंने समझा कि वरुण लोक ये वृंदावन धाम से भौम वृंदावन, जो इस भूमि पर मैंने वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगत से प्रकट कराया है, कि ये वृंदावन धाम उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि वरुण लोक है, वो वरुण लोक को श्रेष्ठ मान रहे हैं। और साथ साथ में ग्वाल बाल भी ऐसा ही समझ रहे हैं कि क्योंकि ये लोग साधारण मनुष्यों की लीला में शामिल हुए हैं इस समय, तो उनको ये पता नहीं है कि वास्तव में मेरा वृंदावन धाम ये यहाँ जो प्रकट हुआ है ये क्या है, कि ये उस गोलोक वृंदावन से बिल्कुल भिन्न नहीं है। तो बेचारे यहाँ मेरे ब्रजवासी भक्त जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे छोटे से गांव और जंगल से ज्यादा श्रेष्ठ वरुण लोक है, तो ये निराकार ब्रह्म है, ये वैकुंठ लोक है, ये कितना और महान होगा। मैं अखिल दृक् हूं, सब कुछ देख सकता हूं, सब कुछ जानता हूं, मैं ये ब्रह्म वैकुंठ और गोलोक वृंदावन तीनों को जानता हूं, तीनों को देखता हूं, और ये निराकार ब्रह्म क्या है, ये तो मेरे दिव्य शरीर का तेज है और ये ब्रह्म मुझ पर आधारित होता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे होती है, वैकुंठ लोग भी मेरे ऊपर निर्भर हैं। जो निराकार की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं कि निराकार में ऐसे अनेक वैकुंठ लोक हैं जिनमें मैं अपने विविध रूपों में दिव्य स्वरूप में विराजमान रहता हूं और वहां पर मेरे भक्तों के संग सुंदर लीलाओं को मैं करते रहता हूं। वहां मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म के पीछे जाने वाले लोग नहीं समझते हैं। और जहां तक वैकुंठ की बात है, अवश्य वो दिव्य आनंद का स्थान है। मैं वहां पर नारायण स्वरूप में विद्यमान रहता हूं और भक्तों के संग लीला करता हूं। परंतु ये जितने भी अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, उनका जो सार है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मधुर स्थान है ये गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में मैं निवास करता हूं। वहां पर मैं मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों के साथ में रहता हूं और यही जो वृंदावन है उसमें जो लीलाओं मैं कर रहा हूं वे वहीं भी करता हूं। लेकिन इस समय वो मेरे योग माया शक्ति के प्रभाव में आकर नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य क्या है। वो नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस समय वो देखना चाहते हैं कि वैकुंठ जगत, तो मैं दिखाऊंगा उनको वैकुंठ दिखाऊंगा, निराकार ब्रह्म दिखाऊंगा। नंद महाराज वरुण लोग तो देख कर आए, देवलोक देख कर आए, अब वो चाहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए क्योंकि आखिर वो तो मेरे प्रिय भक्त हैं। इस प्रकार से मुझे उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जनो वही लोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्चा वाचासु गतिषु न वेद स्वाम गतिम भ्रमन। कृष्ण सोच रहे हैं अब, जन वही लोक एत अस्मिन, जो इस जगत के अंदर जो साधारण लोग होते हैं, अविद्या काम कर्म भी, वो कर्मों में रत रहते हैं, कर्मशील क्रियाशील रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। क्यों करते हैं? काम, क्योंकि उनके अंदर तरह तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को तृप्त करने के लिए वो कर्म करते रहते हैं। परंतु समस्या ये है, अविद्या काम कर्म भी, उनके जो काम हैं वो अविद्या के ऊपर आधारित होते हैं, विद्या के ऊपर नहीं। इसलिए उनके ऐसे अविद्या के आधार पर किए जाने वाले जो कर्म हैं, उनको क्या कराते हैं? भ्रमण। उनको भ्रमण करना पड़ता है। कहाँ भ्रमण करना पड़ता है? अवचासु और उच्च मतलब ऊंचे स्थान में, अवचासु मतलब निम्न श्रेणी के स्थान में। तो उनको भ्रमण करना पड़ता है अविद्या से उत्पन्न होने वाले कर्मों को करने के कारण। उच्च अर्थात कभी उनको देवलोक में जन्म मिलता है, वो देवता बन जाते हैं, कभी कभी अवचासु, कभी नीच योनि में जन्म मिलता है, कभी कभी वो कीड़ा बन जाते हैं। तो ऐसे इन बद्ध जीवों को भ्रमण करता है सारे ब्रह्मांड में, क्योंकि उनके अंदर विद्या या ज्ञान ये नहीं होता है। न वेद स्वाम गतिम, और मेरे स्वयं के धाम के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है। वो नहीं जानते हैं, परस तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि से परे एक और सृष्टि है, परह तस्मात् भाव अन्यः, जो व्यक्त और अव्यक्त भौतिक सृष्टि से परे है। और जब इस भौतिक सृष्टि का विनाश होता है, तो उस भौतिक उस आध्यात्मिक जगत का नाश नहीं होता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि उस मेरे धाम में वैकुंठ जगत में न सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, न अग्नि की, न बिजली की, क्योंकि वहां पर हर वस्तु स्वयं प्रकाशमान है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। फिर आठवें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, माम उपेत्य तु कौन्तेय नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिर परमां गताः, वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेता है, यहां पर वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो मुझे जानता है वो मेरे पास चले आता है, उसको कभी भी यह पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसी प्रकार बार बार श्री कृष्ण ऐसी घोषणा करते हैं कि इस सृष्टि के पर एक दूसरा धाम है, मेरे भक्त उस धाम की प्राप्ति करेंगे, परंतु कई लोग अविद्या के कारण इन चीजों को नहीं जानते हैं, इसलिए यहीं पर भ्रमण करते रहते हैं, मेरे धाम का ज्ञान नहीं है। तो ये जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी का, ये उन लोगों के बारे में है जो बद्ध जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि इसके दो अर्थ हैं ये श्लोक के। न केवल ये श्लोक बद्ध जीवों के बारे में है, परंतु वो इन ब्रजवासियों के बारे में भी हैं जो कि इस समय श्री कृष्ण के सामने थे और जो विचार कर रहे थे मन में कि क्या भगवान हमें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति कराएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछने वाले उनके नित्य सिद्ध पार्षद जो ब्रजवासी भक्त हैं, उनके बारे में भी ये श्लोक है। परंतु कैसे, तो चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे नित्य पार्षद हैं, फिर भी अपने आप को साधारण भक्त समझते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो कितने महान हैं। मेरी योग माया शक्ति के प्रभाव में आकर वो अपने आप को साधारण गांव के निवासी समझते हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये बड़े बड़े तपस्वियों से भी अधिक हैं, श्रेष्ठ हैं, जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने वाले तपस्वी हैं उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ ये मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्त हैं। वैकुंठ लोकों में निवास करने वाले सिद्ध भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं ये मेरे ब्रजवासी भक्त, परंतु इस समय केवल अपने आप को साधारण ग्वाल बाल समझ रहे हैं। और ऐसे समझ के वो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर ब्रज में भ्रमण करते हैं, और उनके भ्रमण करने में वो अनेक कर्म करते हैं, काम कर्म भी। और काम अर्थात उनकी इच्छाएं कौन सी हैं, केवल मुझे प्रसन्न करना, केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए वो काम करते हैं, कर्म करते हैं, इसलिए काम कर्म भी। और अविद्या, ऐसे होते हुए वो नहीं जानते हैं कि मैं परम सत्य हूं। तो देखिए इसी श्लोक को कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्तों के लिए भी और अभक्तों के लिए दोनों के लिए लागू करा देते हैं। तो अविद्या है उनके अंदर, वो नहीं जानते कि मैं परम सत्य हूं, और इसलिए ऐसे अवस्था में वो मेरे धाम का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस भौम वृंदावन को एक साधारण जगह समझते हैं, अपने आप को भी साधारण समझते हैं और उनकी भूमि को भी साधारण समझते हैं, इसलिए मुझे उनको मेरे धाम का दर्शन कराना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की अविद्या होती है। एक अवस्था है जब कोई व्यक्ति महामाया के प्रभाव में आता है, इस भौतिक जगत में और विशेष करके इस पृथ्वी लोक में हम देखते हैं कि अधिकतर सभी लोग महामाया के चंगुल में हैं। जब हम कहते हैं कि ये माया के प्रभाव में है तो हम महामाया की बात करते हैं, और ऐसे महामाया में आकर लोग भगवान को नहीं जानते हैं अविद्या के कारण। जब शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त कोई सौभाग्य से भक्तों के संग को प्राप्त करके तब वो श्री कृष्ण के सेवक बन जाते हैं, और जैसे सेवा करते करते भगवान की अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है, तो फिर उन्हें एक ऐसे ब्रह्मांड में जन्म मिलता है भौतिक सृष्टि में जहां के श्री कृष्ण अभी अभी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण इन अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों में समय समय पर लीला करते रहते हैं। जब तक इस भौतिक सृष्टि का अस्तित्व रहता है, जब तक ये ब्रह्मांड रहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, तो इस भौतिक सृष्टि में श्री कृष्ण की लीला कहीं न कहीं अवश्य हो रही होती है। एक ब्रह्मांड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे श्रृंखला में श्री कृष्ण अपने प्रकट की लीला करते रहते हैं, पूतना वध की लीला करते रहते हैं, रास लीला करते रहते हैं। तो भौतिक सृष्टि के भीतर भी हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की लीला नित्य है, और ऐसे भक्त जो सिद्धि को प्राप्त करता है उसे वहां पर व्योम में होने वाले गोलोक वृंदावन की तैयारी के लिए, थोड़े प्रशिक्षण के लिए उनको ऐसे एक भौतिक सृष्टि में, एक भौतिक ब्रह्मांड में जन्म दिया जाता है जहां की श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और जहां की श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम को प्रकट कराया है। वहां पे वो गोप या गोपी के रूप में या कोई भी ब्रजवासी के रूप में जन्म लेते हैं, और श्री कृष्ण के साथ अवतीर्ण होने वाले जो नित्य सिद्ध पार्षद भक्त हैं उनके उनके साथ में रह के इन साधन सिद्ध भक्तों का प्रशिक्षण होता है। गोलोक वृंदावन के सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को वो समझने लगते हैं, और फिर ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों के संग में पूरी तरह से पक्के हो जाते हैं, फिर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी गति इस प्रकार से होती है। भगवान उनको उनकी लीलाओं में पहले शामिल होने के लिए एक स्थान दे देते हैं। तो ऐसे भगवान सोचते सोचते अपने धाम को प्रकट कराने के लिए ब्रजवासियों को लेकर गए यमुना के तट पर। इति संचिन्या भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयाम आसलोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिकः हरि। तो ऐसे सोचते हुए भगवान, जो कि सबके ऊपर बड़ी करुणा करते हैं और जो हरि हैं, उन्होंने क्या किया अब इसी श्लोक में वर्णन सुखदेव जी करते हैं। परंतु इसके पहले हमें ये विचार करना होगा कि यहाँ ऐसे सोचते हुए श्री कृष्ण ने कुछ किया, अपने भक्तों को वैकुंठ का दर्शन कराया। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति होती है जो कि भगवान को भुला देती है कि वो भगवान है। जिस प्रकार से ब्रजवासियों को वो भुला देते हैं कि वो कौन है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और उनको इस भुलावे में डालकर उनको ये ज्ञात होता है या ये विचार होता है कि हम साधारण गांव के लोग हैं, उसी प्रकार से भगवान की लीला शक्ति लीला के मधुरता को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण को भी भुला डालती कि मैं भगवान हूं। इसलिए जब माता यशोदा श्री कृष्ण का पीछा करती हैं, तो वास्तव में श्री कृष्ण डर के चले जाते हैं। नकल नहीं कर रहे, नाटक नहीं कर रहे होते हैं, वास्तव में भयभीत होकर चले जाते, मेरी माता मारेगी मुझे, मेरी माता पीछा कर रही है मेरी। क्योंकि भगवान के लीला शक्ति का प्रभाव है, स्वयं भगवान अपने आप को अपनी लीला शक्ति के अंतर्गत रख देते हैं ताकि लीला की जो मधुरता है वो बढ़े। लेकिन कभी कभी लीला की आवश्यकता के अनुसार ये भगवान की लीला शक्ति इस भुलावक को ऊपर कर देती है, भगवान को याद आता है मैं भगवान हूं। हाँ, तो मेरे ब्रजवासी भक्त ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, उनको कराना चाहिए दर्शन। तो ऐसे करुणामय भगवान ने सोच कर क्या किया, दर्शयाम आस लोकम स्वम गोपा नाम तमसह परम। तो गोपा नाम मतलब गोपों को उन्होंने क्या किया, दर्शयम आस दिखलाया, क्या दिखलाया, लोकम स्वम अपना लोक, गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक दिखाया, जो कि तमसह परम, जो कि इस भौतिक सृष्टि से परे है, भौतिक सृष्टि के अंधकार से ऊपर है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सारे ब्रजवासी भक्त गोलोक वृंदावन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा वहां आकर कि श्री कृष्ण भी वहीं पर लीला कर रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के वैकुंठ लोक देखे, भगवान का धाम का दर्शन पूरा किया वहीं पे खड़े होकर। और यहां तक नहीं, इतना ही नहीं, आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को निराकार ब्रह्म का भी दर्शन कराया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। जो निराकार ब्रह्म केवल यद्धि पश्यन्ति मुनयो, केवल वो मुनिजन देख सकते हैं, पश्यन्ति जो कि गुण अपाये समाहिताः, जो समाधि की अवस्था में रहते हैं और जिन्होंने तीन गुणों को पार कर लिया है, जो निराकार ब्रह्म का दर्शन ऐसे ही मुनि लोग कर सकते हैं, उस निराकार मुनि का, उस निराकार ब्रह्म का दर्शन भगवान ने अपने प्रिय ब्रजवासियों को कराया। वो निराकार ब्रह्म जो कि सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है और जिसको ब्रह्म ज्योति ही कहते हैं और जो सनातन है, ऐसे निराकार ब्रह्म का दर्शन कराया। वो ज्योति ब्रजवासी लोगों को वो यात्रा में ले गए। भगवान, ठीक है, तुम यहां भौम वृंदावन से संतुष्ट नहीं हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो और ये भौम वृंदावन साधारण है, ठीक है, हो तुम मेरे प्रिय भक्त, चलो ले चलता हूं मैं तुम्हें। तो ले गए, गोलोक दिखाया, वैकुंठ दिखाते दिखाते निराकार ब्रह्म का भी दर्शन कराया और फिर उनको अक्रूर घाट ले आए, जो कि मथुरा और वृंदावन के बीच में है। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अक्रूर को महाविष्णु और अनंत शेष का दर्शन कराया था नदी के भीतर, उसी प्रकार से यहां पर उसी स्थान में श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को फिर से कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर् ब्रह्मणो लोकम यत्राक्रूरो अध्यगात पुरा। तो ऐसे अवस्था में ग्वाल बाल श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर लाए गए अक्रूर घाट पर ब्रह्म हृदय नाम के स्थान पर वो पानी में स्नान करने लगे और फिर से उनको उठाया श्री कृष्ण ने बाहर, और वहां पे उन्होंने पुनः उनको कृष्ण लोक का दर्शन कराया। निराकार ब्रह्म में लेने के बाद फिर से उनको कृष्ण लोक भगवान श्री कृष्ण ले गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि केवल उनको कोई साधारण वैकुंठ लोक नहीं दिखाया, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन का दर्शन ब्रजवासियों को कराया। नन्दादयस्तुतं दृष्ट्वा परम आनंद निवृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। फिर नंद आदि जितने गोप थे जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और इस गोलोक वृंदावन के दृश्य को देखा, परम आनंद निवृताः, तो पूरी तरह से दिव्य आनंद के सागर में वो डूबने लगे। कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिताः, और जितने भी मूर्तिमान वेद आदि थे वो इस गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की स्तुति का गान कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। और जब ब्रजवासियों ने ये परव्योम गोलोक वृंदावन देखा तो श्री कृष्ण वहां इन स्तुतियों को स्वीकार कर रहे थे। ब्रजवासियों को देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनको आलिंगन करने के लिए नहीं आए, उनका जो बचपना था वो नहीं दिखा, और न ही ब्रजवासियों के मन में उस समय श्री कृष्ण को आलिंगन करने की इच्छा हुई। उस समय वो थोड़े बहुत पीछे हट गए और फिर से भगवान की लीला शक्ति ने उनको भौम वृंदावन में उनको ले आए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण और उनकी लीला शक्ति ब्रजवासियों को सिखाना चाहते थे कि देखो, भौम वृंदावन से ज्यादा कोई मीठा स्थान नहीं है, इस भौम वृंदावन को कोई कम नहीं समझना। ये वृंदावन में स्थित, ये भूमि पर स्थित जो वृंदावन है ये भी उसी गोलोक वृंदावन के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही गोलोक वृंदावन है। सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ, श्री कृष्ण ने उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी कर ली। और फिर से जब भौम वृंदावन के मिठास का अनुभव करने लगे, जो कि वैकुंठ और निराकार ब्रह्म से कहीं श्रेष्ठ है, फिर से ब्रजवासीगण अपने प्रिय कृष्ण के साथ बड़े आनंद में रहने लगे। इस प्रकार से ये 28वें अध्याय की समाप्ति होती है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वरुण लोक से वापस ले आकर सारे ब्रजवासियों को निराकार ब्रह्म का दर्शन कराया, वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया और स्वयं अपने धाम कृष्ण लोक का दर्शन भी कराया। हरे कृष्णा। तो अभी हम और इस भौम वृंदावन के लीलाओं का दर्शन करेंगे, साथ साथ भजन भी गाएंगे। हरे कृष्णा।